श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं 10 श्लोक। तो पिछली बार हमने कुछ आसुरी संपत्तियों का वर्णन सुना था, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बार दोहरा लेते हैं, भगवान ने जिन जिन संपत्तियों को, जिन जिन प्रवृत्तियों को आसुरी बताया है। दे मोक्ष दैवी बांधती है आसुरी संपत्ति, मत शोक अर्जुन कर हुआ तू दैव संपद को लिए। दो भांति की है सृष्टि दैवी आसुरी संसार में, सुन आसुरी अब पार्थ दैवी कह चुका विस्तार में। क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति जग में जानते आसुर नहीं, आचार सत्य विशुद्धता होती नहीं उनमें कहीं। कहते असुर झूठा जगत बिन ईश बिन आधार है, केवल परस्पर योग से बस भोग हित संसार है। इस दृष्टि को धर मूढ़ नर नष्टात्मरत अपकार में, जग नाश हित वे क्रूर कर्मी जन्मते संसार में। मदमान दंभ विलीन काम अपूर का आश्रय लिए, वर्ते अशुच नर मोहवश होकर असत आग्रह किए। तो सत्कर्म सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम भाव और आचरण अब किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, उनको आगे के 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतापमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। यानी वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वालों की, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वालों की आसुरी प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार का उनका आचरण होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं नहीं मिटती। तो ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय है, यानी बार बार मरना ही है। तो चिंता के भी 2 विषय बताए हैं, एक परमार्थिक और दूसरा सांसारिक, यानी मेरा कल्याण मेरा उद्धार कैसे हो, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो। इस प्रकार जिनको परमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ है, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इसके विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित होते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि नाम आदि कैसे बने रहेंगे, बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, जो कुछ हम छोड़ जाएंगे उसका क्या होगा। अब मनुष्य व्यर्थ में चिंता करता है, देखा जाए तो निर्वाह तो होता है, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। तो अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त भी फटी लंगोटी और फूटी तुम्बी बाकी बचती है और मरता है पहले। तो ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो, धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पे यही है कि भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है, वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती, वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी हैं और आप अविनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो, नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है। आशापाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसंचयान्। यानी वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देत है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाव। धान नहीं भीड़ों नहीं नहीं रुपयों रोक, जीमण बैठे रामदास आन मिले सब थोक। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाला सकाम मनुष्य भी कहता है कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है, ना अन्यद अन्यदस्तीति वादिनः। उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां के दिव्य भोगों को भोगेंगे, स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ नहीं है, वे ऐसा मानते हैं। तो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता हो जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। और आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मंगतापन भिखमंगापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए, इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं की बनी रहती है भावना। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती, और यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे, अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जब तक संसार के साथ बंधन है तब तक कामनाओं का अंत नहीं। और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्हें अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता देना उन्होंने दे दी है और उनके साथ संबंध जोड़ लिया है। और आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं, काम और क्रोध के सिवाय उनको कुछ और नहीं दिखता, इससे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है, तो यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में हो जाएगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ तो वह कब तक हमारे वश में रहेगा, मौका पड़ते ही वह घात करेगा, अतः क्रोध का परिणाम बुरा होता है। तो अब आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमशः आगे के तीन श्लोकों में बता रहे हैं।
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्।
तो वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, और अब इस मनोरथ को प्राप्त और कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और आ जाए तो बस इसी 99 के जोड़ में भी सदा लगे रहते हैं। तो आसुरी प्रकृति वाले लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर लेंगे, इतनी वस्तुएं हमारे पास हैं और आ जाएंगी, हमारा बड़ा लड़का पढ़ा हुआ है, इतना धन वस्तुएं उसके विवाह में आ जाएंगी, इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना जमीन से आ जाएगा, इतना मकान के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज से आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उनकी दृष्टि अपने शरीर तक परिवार पर जाती है, वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि ये सब ये दवाएं करने से शरीर ठीक रहेगा, ये चीज़ इकट्ठा कर ली जाए तो हम सुख आराम से रहेंगे, एयर कंडीशन गाड़ी हो तो गर्मी नहीं लगेगी, ऐसे वस्त्र मंगा लें जिनसे सर्दी ना लगे, ऐसी बरसाती छाता वगैरह वगैरह, तो ऐसे गहने कपड़े श्रृंगार का सामान मंगा लें जिससे हम सुंदर दिखाई दें इत्यादि। इन सब से मनुष्य बच नहीं सकता, लेकिन कितना भी चाहे साधारण मनुष्य के वश में नहीं है इन सब वृत्तियों से बचना। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस सामग्री का क्या करेंगे, और मरते समय यह सामग्री हमारे काम आएगी, अंत में संपत्ति का मालिक कौन होगा, बेटा तो कपूत है अतः वह सब नष्ट कर देगा, मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी, इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे अपने बच्चों से डरना पड़ता है, नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग चोरी ना कर लें, हड़ताल ना कर दें। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में कभी कभी व्यापार आदि के कार्यों को लेकर इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है, इतना आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया, इतना टैक्स देना है, ये सब स्फुरणाएँ कामनाएँ होती हैं। अब ऐसी ही स्फुरणाएँ जो होती हैं वो जड़ता का उद्देश्य है और आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी होती हैं। तो इन दोनों की वृत्तियों में अंतर क्या हुआ? तो क्या इंसान कर्म ना करे, व्यापार ना करे, नौकरी ना करे? तो उत्तर यहाँ पे यही है कि दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी उनमें अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, वह कर्म सब करता है लेकिन उनसे लिप्त नहीं होता। परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने और भोग भोगने का रहता है, और वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है और दोनों में अंतर है। एक अपने जीवनोपार्जन के लिए करता है, आवश्यक कर्तव्य है उनकी पूर्ति के लिए धनोपार्जन करता है, परमात्म प्राप्ति के लिए भी धनोपार्जन करता है, लेकिन दूसरा केवल सुख भोग की इच्छा से धनोपार्जन करता है। तो यहां भगवान अब 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमा पद की व्याख्या कर रहे हैं।
असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी।
यानी वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे, हम ईश्वर सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं। तो यहाँ पे आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं, जैसे कि वो हमारे विपरीत चलता था हमने उसे मार दिया, और कोई भी हमारे विपरीत चलने का साहस करेगा तो उसको भी ऐसा ही दंड मिलेगा, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता, हमारे पास क्या नहीं है, इस प्रकार का दंभ वे पाल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के भीतर तो जलन होती ही रहती है और ऊपर से वो डींगे भी हांकते हैं कि हम बड़े बलवान हैं, हमारे पास इतना सुख आराम है, हमें कोई कमजोर ना समझे, इसलिए वो अपने आप को और अधिक सशक्त बनाने की ऊपर से कोशिश करते रहते हैं। तो आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के पास काम और क्रोध का ही बल होता है, वास्तव में वे सुखी नहीं होते, वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं, जैसे कि हिरण्यक्षिप आदि की तरह वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं। प्रहलाद की कहानी सबने सुनी होगी, जो स्वयं को ईश्वर मानता था और सबसे ये कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरी ही पूजा अर्चना करो, बाकी लोग उन्हें निकृष्ट दिखाई देते हैं।
आढ्यो अभिवजन वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः।
यानी हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, नौकर चाकर हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, खूब हम यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे, इस तरह से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। तो आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान से परायण होकर इस तरह के मनोरथ करते हैं कि कितना धन सोना चांदी मकान खेत जमीन हमारे पास है और कितने अच्छे अच्छे ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं जिनके बल पर हम रिश्वत सिफारिश से जो चाहे वो कर सकते हैं। और आप इतने घूमे फिरे, आपको कोई कई आदमी मिले होंगे, आप भी देखिए, आप भी बताइए कि आपने हमारे समान कोई ऐसा देखा है तो अपने ऊपर इस तरह का मिथ्या अभिमान करते हैं। यक्षीय दास्यामियां ने हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है, हम तो पूरे गांव को भोजन कराएंगे, 100-101 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, इतना दान करेंगे जितना आज तक किसी ने ना दिया हो। मामूली यज्ञ दान पूजा हम नहीं करते, अखबारों में अपना नाम देंगे, अपने नाम की जगह जगह पट्टियां लगवाएंगे, धर्मशाला में जहां बनवाएंगे वहां अपना नाम खुदवाएंगे जिससे उनकी यादगार बनी रहे। तो हम कितने बड़े आदमी हैं ये दिखाने का दम्भ उनमें सदा रहेगा। तो हमें सब तरफ से सब सामग्री सुलभ है और हम उसका यज्ञ के लिए उपयोग करेंगे तो हम पुण्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन यह सब मूढ़ता है और मनोरथ वाली वृत्ति है, नहीं जानते कि ये उनके किसी काम आने वाली नहीं है। तो परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति जलन संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, अब इसको आगे के श्लोक में बता रहे हैं।
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु च।
यानी कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में जाकर गिरते हैं। जड़ का उद्देश्य होने से वे मोह जाल से ढके रहते हैं और मोह जाल का तात्पर्य है कि काम क्रोध और अभिमान को लेकर अपने मनोरथ बना लेते हैं जो उनसे कभी नहीं छूटते। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनकी तरफ उनकी वृत्तियां ऐसी बढ़ती ही जाती हैं कि इतना धन मिल जाएगा, उसमें बाधा लग गई तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इतना पता, इसका पता अगर राज के अधिकारियों को लग गया तो हमारे मुनीम नौकर आदि हमारी शिकायत कर दें तो हम उनको लोगों को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अपने विरोधियों का अंत कर देंगे। तो इस प्रकार मोहजाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है जो उनसे बहुत ही क्रूरतम कार्य भी करवा लेता है। पतंति नरकेषु च, यानी मोहजाल उनके लिए जीते जी नरक तो है ही, लेकिन मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। तो नरके अशुचौ कहने का तात्पर्य यही है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे जाकर गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है मरने के बाद भी उनकी वैसी ही गति होती है। तो वास्तव में असुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूप भी अग्नि में जल रहे हैं, परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है, भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है, इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों का वर्णन किया है मनोरथ इत्यादि। तो अब भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसको बताने के लिए आगे का प्रकरण भगवान प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसे हम पढ़ेंगे कल। तब के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।